समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी और जानेंगे कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी हमारी नजर रहेगी और उन खास हस्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिवस है। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी नमस्कार।
Namaskar, Sir Firozi, Adab, and a very warm welcome to all our listeners who have joined us in this Thursday edition of Parikrama. And yes, jab naam hai show ka Parikrama, to hasbe dastoor chalenge, desh ki Parikrama karenge, see which interesting stories are coming in from different parts of the country. Kyunki zahir si baat hai, kuch khabre Sir Firozi hamare correspondent dena chahte hain, but they are not, you know, they are not hard news as we say.
Jee.
Some soft stories, but yet our listeners should know about them. So that's why we come with our news magazine Parikrama. And let's start with the headlines first, Sir Firozi.
जी बिल्कुल सायरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए पूरे वर्ष पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
India adopting pragmatic and techno-legal approach to AI governance, asserts Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav.
भारत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की ब्रिटेन यात्रा के दौरान अलगाववादियों द्वारा सुरक्षा उल्लंघन की निंदा की और ब्रिटेन सरकार से राजनयिक दायित्वों को पूरी तरह निभाने को कहा।
बब्बर खालसा इंटरनेशनल टेररिस्ट विद पाकिस्तान ISI लिंक्स अरेस्टेड इन ज्वाइंट ऑपरेशन बाय उत्तर प्रदेश एंड पंजाब पुलिस।
और हैदराबाद में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज शाम हैदराबाद FC का मुकाबला पंजाब FC से होगा।
And now it's time for our segment, Dateline India. Well, today we are celebrating the vibrant tapestry of India at the Vividhata Ka Amrit Mahotsav that is currently underway at Rashtrapati Bhavan. It's more than just a festival. It's a beautiful expression of our shared heritage and the unity that underlies our diversity.
बिल्कुल सायरा, और हम सभी जानते हैं कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में निहित है और ये महोत्सव विविधता का अमृत महोत्सव विभिन्न क्षेत्रों की अनूठी परंपराओं, कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए एक अद्भुत मंच प्रदान करता है। ये हमारी सामूहिक पहचान की सराहना करने का एक शानदार अवसर है।
Absolutely, Sir Firozi. So let's explore what makes the Vividhata Ka Amrit Mahotsav so special. The name itself is inspiring, isn't it? Well, Amrit signifies something precious, something that nourishes and sustains us. But how does this festival nourish our sense of national unity?
सायरा, ये महोत्सव हमें भारत के विभिन्न हिस्सों की परंपराओं का अनुभव करने और जश्न मनाने के लिए एक साथ लाता है। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही हमारी भाषाएं, रीति रिवाज और व्यंजन अलग अलग हों, लेकिन हम सभी अपने साझे इतिहास और भारत के प्रति अपने प्रेम से बंधे हुए हैं।
Very rightly said, Sir Firozi. This year, the festival is highlighting the beauty and cultural richness of South India. And what are the unique aspects of South Indian culture that you find particularly inspiring?
सायरा, मैं अपनी बात करूं तो मुझे दक्षिण भारतीय कला की जो जटिल कलात्मकता है और जो शिल्प कौशल है वो बहुत हैरान करता है। खासतौर पे जो वहां के मंदिर की जो संरचना होती है, हम कहते हैं कि वो द्रविड़ शैली में बनी होती है और उसमें जो मूर्तियां होती हैं उनमें बहुत सटीकता, बहुत प्रिसिशन के साथ काम किया गया होता है और ये सभी कला की गहरी भावना और उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
That's very right, Sir Firozi. In fact, मुझे भी सबसे ज्यादा यही चीज इंस्पायर करती है, especially about South Indian temples. They are so mystical and एक अजीब सी मिस्ट्री भी जुड़ी रहती है, बिकॉज आप सोचते हैं कि इतने साल पहले जब ना टूल्स होते थे, इतने एडवांस्ड ना मशीन्स होती थी, then how could they build such marvelous structures? I think that's truly, truly inspiring. And if we talk about South India, it has been a cradle of civilization for centuries. Its contributions to art, literature, philosophy and science have enriched enriched India's cultural heritage and they continue to inspire us even today. The Vividhata Ka Amrit Mahotsav, it's a wonderful opportunity to celebrate this legacy. In fact, agar language ki bhi baat ki jaye sir Firozi, to kehte hain that you know Tamil is one of the most ancient language.
Ji, bilkul. Aur Rashtrapati Bhavan mein ho rahe is mahotsav mein Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Lakshadweep aur Puducherry ki kala, hastashilp, vyanjanon aur paramparaon ka प्रदर्शन किया जा रहा है. तो सायरा एक नजर इस पर भी डाल ली जाए कि भारत की विविधता के इस महोत्सव में हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्या योगदान दे रहा है. सबसे पहले बात कर्नाटक की कर लेते हैं. आपको इस राज्य के बारे में सबसे क्या खास बात लगती है?
वेल फॉर मी डेफिनेटली द चेन्नापटना टॉयज, दे आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स कैन बी बोथ ब्यूटिफुल एंड सस्टेनेबल. दे आर मेड यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स एंड वाइब्रेंट कलर्स एंड दे आर अ testament to the skill and creativity of the artisans who created them. In fact, I have got the fortune to visit that village. Wo pura village apne aap pe ek aap keh sakti hain ki sachchai se dur lagta hai because every house itself looks like a toy house and a beautiful sare vibrant colors se saje hue aur har us ghar ke andar jo hai aapko toys banane ki awaaz aa rahi hoti hai. I think it's a very beautiful experience. If our listeners get a chance then they should definitely visit that.
और बात करें केरल की तो वहाँ के जो नृत्य होते हैं वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आते हैं, चाहे वो कथकली हो या मोहिनी अट्टम हो. और हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में यूजुअली थिएटर के थ्रू, प्लेस के थ्रू कहानियां सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, तो वहीं केरल में नृत्य का सहारा लेकर कहानियों को जीवंत किया जाता है और ये हमें अपनी पौराणिक कथाओं और हमारे समृद्ध गौरवशाली इतिहास से जोड़ते हैं.
यस ऑफ कोर्स, एंड दैट्स व्हाई प्रोबब्ली वी कॉल केरला गॉड्स ओन कंट्री. एंड इफ यू टॉक अबाउट तमिलनाडु, वेल आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ तमिल आर्किटेक्चर, हिस्टोरिकल arts and culture, and of course how can we forget Carnatic music, and that's of course something very close to my heart as well. Sir Firozi, Tamil Nadu's culture comes alive through its music and dance. Tappatam electrifies festivals with its rhythmic drum beats, while Bharatanatyam mesmerizes with graceful storytelling. Each of these art forms isn't just a performance, it's a tradition that keeps Tamil Nadu's heritage alive. और यही मेरे ख्याल से जो तमिल आर्ट एंड कल्चर की तरफ मेरी मोहब्बत थी शायद बचपन से, जिसकी वजह से मैंने भरतनाट्यम भी एनरोल किया. बट आई कुडंट कंप्लीट यू कैन से द होल डिग्री जो एडवांस्ड होती है, बट यस डेफिनेटली इन माय स्कूल इयर्स आई जॉइन भरतनाट्यम क्लासेस एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल डांस फॉर्म, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट इट. For girls especially, it adds a different grace to your personality. आप चाहे वो डांस कर रहे हो ना हो, लेकिन आप देखिएगा जितने भी भरतनाट्यम के डांसर्स हैं या कथक के डांसर्स हैं, अगर बात की जाए तो एक अलग सी ग्रेस होती है उनमें.
बिल्कुल. और उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो बात आप कई वर्ड्स में नहीं कह पाते हैं, वो एक एक्सप्रेशन से कह जाते हैं. तो मुझे लगता है कि इन नृत्यों की सबसे खास बात अभिव्यक्ति जो होती है वो सबसे बड़ी बात है इन नृत्यों की. और अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो बंजारा कढ़ाई, तेलंगाना की डोकरा कास्टिंग, वहीं आंध्र प्रदेश के एतिकोप्पका खिलौने और कोंडापली खिलौने जैसी कलाओं के कारण इन ये राज्य जो हैं आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं.
यस एब्सोल्युटली. और आपने जो है तेलंगाना या फिर आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश के, अगर दोनों एक ही रीजन में हुआ करते हैं, तो वहां तो आप वहां के तो खाने तो मशहूर है ही. वहां के जो आजकल तो खासतौर से रमजान है तो आप देखेंगे हैदराबाद में हलीम का जोर बहुत होता है, इजंट इट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द बिदरी आर्ट, जो बीदर की मिट्टी से बनाए के उसको कास्ट किया जाता है अबाउट यू नो यूजिंग सिल्वर, आई थिंक दैट्स अ ब्यूटिफुल आर्ट इन इट सेल्फ. तो साउथ इंडिया तो कह सकते हैं एक खजाना है कल्चर का.
जी.
एंड आई एम ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय द वरायटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर डिस्प्लेड ऑन दिस यू नो विविधता का अमृत महोत्सव. इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ आर शेयर्ड हेरिटेज. दिस फेस्टिवल इन It makes us feel proud to be an Indian.
जी बिल्कुल. और विविधता का अमृत महोत्सव इन कलाकारों का प्रोत्साहन करता है और ये सुनिश्चित करता है कि परंपराएं फलती फूलती रहें, क्योंकि सायरा बहुत जरूरी है कि कला की कद्र की जाए.
कला की कद्र भी की जाए और उसके कद्रदान जो है लोगों को भी बनना पड़ता है।
जी।
आजकल हम लोग शॉर्टकट वाली लाइफ में जीते हैं, फास्ट फूड में जीते
जी।
हैं, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि उसमें एक कहीं ना कहीं नफासत कहीं ना कहीं खो जाती है। तो डेफिनेटली बाय गोइंग एंड विजिटिंग सच प्लेसेस वी नॉट ओनली बूस्ट द मोरल ऑफ दीज आर्टिजन्स, लेकिन उनको कुछ आप खरीदारी करते हैं तो सोचिए ये कलाएं जिंदा रहेंगी, बिकॉज इफ इट्स अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर देम, इफ दे विल नॉट अर्न थ्रू देम देन नेचुरली उनके बच्चे फिर वो क्यों आगे बढ़ाएंगे।
उन कलाओं को प्रदर्शित करने से उनको एक मौका मिलता है, खरीदार उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। और बात करें युवा सहभागिता जोन, जो इस महोत्सव का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जहां युवाओं को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।
यस एंड दिस फेस्टिवल सर फिरोजी, इट डेफिनेटली प्रोवाइड्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, वन प्लेटफॉर्म वेयर ऑल द आर्टिजन्स कैन कम टुगेदर एंड डिस्प्ले देयर यू कैन से आर्ट। एंड जो पहला एडिशन इसका हुआ था उसमें फोकस जैसे इस बार साउथ इंडिया पे, लास्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट आर्टिजन्स पे था, एंड द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट एडिशन विद ओवर 1 crore इन सेल्स फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न आर्टिजन्स डेमोन्स्ट्रेट्स द पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। इट हेल्प्स टू एम्पावर द कम्युनिटीज एंड प्रिजर्व देयर कल्चरल हेरिटेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। एंड देर आर ऑल्सो मेनी इंटरक्टिव वर्कशॉप जो साथ साथ चलती हैं, स्टोरी टेलिंग सेशन हो रहे हैं, कल्चरल परफॉर्मेंसेज हो रही हैं। दे आर डिजाइन टू स्पार्क एन इंटरेस्ट इन द हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन एंड इंस्पायर पीपल टू बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग दीज आर्ट्स।
और अपने श्रोताओं को बताते चले कि दक्षिण भारत की संस्कृति के इस उत्सव का अनुभव बिल्कुल मुफ्त ले सकते हैं। विविधता का अमृत महोत्सव आज से 9 मार्च तक सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक राष्ट्रपति भवन में जनता के लिए खुला है। प्रवेश सिर्फ गेट नंबर 35 से ले सकते हैं।
दैट्स राइट, एंड इफ यू वांट टू बुक योर टिकट देन प्लीज डू इट सो ऑनलाइन एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। एंड टू बुक योर टिकट इन एडवांस ऑनलाइन प्लीज विजिट द URL addresses visit.rashtrapatibhavan.gov.in, that is visit.rashtrapatibhavan.gov.in. please don't miss this opportunity to immerse yourself in the magic of South India.
और श्रोताओं, अब आपको लेकर चल रहे हैं देश की परिक्रमा पर और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। सायरा कहाँ चल रहे हैं सबसे पहले?
पहले तो कहीं नहीं चलते हैं, पहले फिलहाल राजधानी दिल्ली से ही शुरू करते हैं अपना सफर। वेयर द 39th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर और आहार इज अंडरवे एट भारत मंडपम, एंड द 5-day इवेंट इन दिल्ली इज विटनेसिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ ओवर 1,700 एग्जिबिटर्स इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम 22 कंट्रीज। लेट्स हियर मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
The Ahar Fair is one of Asia's biggest B2B events in food and hospitality shows. With a rich legacy of 38 years, the fair has become one of the most ultimate destinations for global vendors and sourcing professionals. Several stakeholders are exploring the multifaceted sector of food and hospitality with confectionery and bakery products, condiments, ingredients, and agri-produced, processed food, organic marine food, beverages, foreign participation, and marquee companies. Talking to Akashvani News, an exhibitor named Harish Mathur thanked the government for providing a platform to showcase their products.
हम भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है इस प्लेटफॉर्म पे, और हमारे जैसे ही शायद बहुत सारे एग्जिबिटर्स और बिजनेस वाले होंगे जो इस प्लेटफॉर्म के लिए रहते हैं कि हर साल हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और हमारा बिजनेस को हम लोग आगे बढ़ाते रहें।
Another exhibitor named Jayanti Bhandari highlighted that the fair provides great opportunities in reaching out to potential clients and expressed her gratitude to the government for promoting Make in India products.
It gives us great opportunity to be here and to be present here in Ahar. And I would like to thank Indian government for giving us this opportunity, for making us feel more motivated to be more Make in India.
The fair is open till the 8th of this month from 10 a.m. to 6 p.m. The entry for the fair is available with a one-day pass for ₹300. For Parikrama, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए ड्राइविंग के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न करने पर शोध किया गया है। हमारे संवाददाता इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं।
नागपुर विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर संजय ढोबड़े ने अपने विभाग की एमएससी भौतिकी की छात्रा मार्सियाना सिल्वेस्टर के साथ मिलकर दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए ड्राइविंग के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न करने पर शोध किया है। डॉक्टर ढोबड़े और मार्सियाना सिल्वेस्टर ने संयुक्त रूप से पीजो इलेक्ट्रिक सामग्रियों का उपयोग करके एक दबाव उपकरण की संकल्पना रखी है जो वाहन के चलते समय बिजली उत्पन्न और संग्रहित कर सकता है और इसका उपयोग वाहन को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। पीजो इलेक्ट्रिक सामग्रियां बहुत सस्ती होती है और कम लागत पर बिजली उत्पन्न करती है। यह अनुसंधान स्वच्छ बिजली उत्पादन पर सामाजिक रूप से लाभकारी भी है। पीजो इलेक्ट्रिक दबाव उपकरण सिद्धांत द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की गुणवत्ता उत्कृष्ट है और इससे कोई कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं होती है। यह समझा जा सकता है कि इस शोध से वातावरण में कार्बन की मात्रा नहीं बढ़ेगी बल्कि यह शोध पर्यावरण की दृष्टि से लाभदायक है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
And now from Western India, we now move to the Northeast. We go to Manipur. And the state, Sarfirozi, has been covered. Almost 80% of the state has been covered by safe drinking water supply. And these projects are continuing to achieve 100% coverage in the state. In such a step, a drinking water supply line was inaugurated at a remote hill village of Manipur, fulfilling the long-cherished dream for safe drinking water of the villagers. Let's hear more from our Imphal correspondent.
Lairoxing villager in Senapati district celebrated in joy with the arrival of the first drinking water supply in the village that was taken up under New Development Bank NDB project. Established in 1956, Lairoxing villagers told that they had never received such facility earlier and the village women always used to fetch water from a particular pond from a distance of more than 1 kilometer till that. The villagers informed that they always used to suffer waterborne epidemic every year for the water found at the village was not in good quality. Speaking to Akashvani News Parikrama, the village leader Mr. N.G. Joseph said that the whole villagers were so happy on coming of water supply to the village in reality and they don't have enough words to express their joy and gratitude to all concerned. He said,
so before the inaugural of drinking water supply at Lairoxing, the villagers fetching waters from the far distance, walking down the stream for about 1 to 2 kilometers, which becomes daily routine for the women apart from their daily schedules. The drinking water supply has been made a reality. It has been inaugurated. The whole villagers are feeling so happy. Thank the government of India for giving this scheme.
The public health engineer Department Manipur, which construct the water supply in the village, urged the villagers to pay compulsory tax of rupees 100 per household for every water tap connection, where rupees 80 will be utilized for maintenance of the project. The department also appealed the villagers to preserve the nearby forest and environment to get enough water at the place, as no department cannot bring water to a place by magic power. JJ Thokchom, Akashwani News, Parikrama, Imphal.
And Sarfirozi, before we head to the next destination, do you remember कि हम लोग बचपन में कैसे वो कॉमिक्स पढ़ा करते थे और मेरे जमाने में तो यू वोंट बिलीव किराए पे कॉमिक्स मिलती थी
बिल्कुल लाइब्रेरीज से हम लोग लाया करते थे
यस लाइब्रेरीज के अलावा जो छोटे शहर होते हैं लाइक आई बिलोंग टू लखनऊ था हमें याद है वहाँ पे छोटे छोटे जनरल स्टोर जो बेचते हैं कॉमिक्स तो बहुत से बच्चे खरीद अगर नहीं पाते उनको लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती थी तो सब लोग पूलन करके किराए पे लेते थे एंड दैट्स हाउ यू नो हम लोग एक इंसान को दे देते थे कि भैया ठीक है तुम पढ़ो कस कस के पढ़ो एनिमेटेड स्टाइल में ताकि टाइम से पहले हम लोग लौटा दें सो एवरीबॉडी यूज टू लिसन टू दैट सो वेरी ब्यूटिफुल मेमोरीज आर रिलेटेड टू कॉमिक्स And even today, you can say there is a revival in the comic industry, especially after, we can say, graphic novels ki jaise bahut tezi se badi hui. So, with an aim to promote the comics industry in India, Comics Creator Championship is being organized under the aegis of Waves 2025 that is scheduled to be held in Mumbai from 1st to the 4th of May. The championship is part of the Create in India Challenges, which is a flagship initiative of the Ministry of Information and Broadcasting, and it's organized in association with the Indian Comics Association. The 76 semi-finalists are now working to give final touches to their artwork. So, hum log ki to Chacha Chaudhary aur Pinky aur Doga wo sari comics se hoti thi, but hopefully ab is competition ke baad kuch naye characters bhi ubhar ke samne aayenge. And let's hear more about this competition from our Mumbai correspondent.
The Comic Creator Championship is being held in two categories, that is professional and amateurs. The artists will be judged on their creativity, originality, storytelling and visual appeal, besides their ability to reflect Indian themes and sensibilities. By the end of the competition, each finalist will have a coherent 8 to 10 page comic for a panel of 5 judges who will decide the 5 winners under each category. Among the championship's star-studded jury is Jazel Homawazir, an award-winning animation professional and the creator of The Best Legion, India's first and longest running web manga. Impressed by the entries coming through, Mr. Jazel Homawazir said, Waves 2025 is a good step, especially for self-published artists to showcase their talent to a wider audience. He also expressed the need for expanding the comics market in India.
Since the very beginning, India doesn't have a concentrated comics market nor a comics distribution system. I'm hoping this event opens those doors for artists and self-published artists like me to put work out there into the market. Onto the shelves of the comic book stores.
On his advice to budding comic artists, Mr. Jazel Homawazir said,
To the artists, I definitely say follow your passion because it's the only thing that can bring out the best in you. And another thing that I want to say is promotion. It's very important to promote your work on various platforms, not just social media, but online webcomic sites, as well as various forums that are there to share your artwork.
The winning entries of the championship will be published in a Waves comic anthology and the artist will receive cash rewards. With Nisha Rane, this is Sweetie Jain for Parikrama from Mumbai.
And now it's time for business news. Well, benchmark domestic equity indices today extended their positive momentum for the second straight session amid favorable global cues. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, gained 610 points or 0.83% to close at 74,340. And the National Stock Exchange Nifty 50 rose 207 points or 0.93% to settle at 22,545. In the global crude market, Brent crude was trading over 0.2% up at $69.46 per barrel and WTI crude added over 0.3% to trade at $66.52 per barrel when reports last came in. And in Indian bullion market, 24-carat gold was trading down at 85,810 rupees for 10 grams, while silver 999 fine was also trading down at 97,560 rupees per kilogram.
और श्रोताओं, अब बात खेल के मैदान की. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में कल रात लाहौर में दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 50 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. न्यूजीलैंड के 363 रन के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 312 रन ही बना पाई. फाइनल में 9 मार्च को दुबई में न्यूजीलैंड का मुकाबला भारत से होगा.
I'm sure that everybody would be glued to their TV sets in that day. And another news from the world of sports. Well, in Indian Super League football, Hyderabad FC will take on Punjab FC at 7:30 this evening at Gachibowli Stadium in Hyderabad. Yesterday, Odisha FC defeated Jamshedpur FC 3-2 at Jamshedpur. With this win, Odisha FC have climbed to the sixth spot with 33 points, but their league campaign has wrapped up. For their playoffs chances, Odisha will now rely on Mumbai City FC to lose their remaining two matches. And now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall the events that happened on this day.
In today's episode, we remember revolutionary freedom fighter Ambika Chakrabarty, who died on the 6th of March 1962. He was a member of the Indian Republican Army, which was led by Mastarda Surya Sen. He later became a member of the Chittagong Jugantar Party.
On the 18th of April 1930, Chakrabarty led a group of independence activists who damaged the whole communication system in the region of Chittagong. He became severely injured in a gunfight against the British Indian Army in Jalalabad on the 22nd of April 1930, but managed to escape. A few months later, Ambika Chakraborty was detained by the British police from his hiding place and was sentenced to death after the trial.
Later, the death sentence was altered to transportation for life to the cellular jail in Port Blair. After independence, Ambika Chakraborty joined politics and continued to serve people till his death in 1962. We salute the great nationalist.
We also remember the freedom fighter Moturi Satyanarayana, who died on the 6th of March 1995. An ardent Gandhian, Moturi participated in the Quit India movement of 1942.
After India became independent, Moturi was a member of the Constituent Assembly of India from 1948 to 1950. He served as a member of the Committee of the Indian Constitution for its language section. Moturi was twice nominated to Rajya Sabha. He was also a member of the Madras Legislative Council and the Central Advisory Board of Education of the Government of India.
Moturi actively worked towards promoting the Hindi language in the southern part of India from 1936 to 1961. He had joined the Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha as a volunteer and gradually became the secretary and principal secretary of the organization. He was the editor of Hindi Pracharak, Hindi Prachar Samachar and Dakshina Bharat. He organized many institutions all over India, such as Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha of Madras, and was the founding secretary of Telugu Bhasha Samiti of Madras and Hyderabad.
Moturi was a recipient of the Padma Shri Award in 1954 and the Padma Bhushan Award in 1962. Andhra University honored him with its Kala Prapurna Award in 1977. We salute the great Indian.
We also remember martyrs Bal Mukund Khudabaksh of Delhi and Shiv Ghulam Dube of Haryana, who participated in the First War of Indian Independence in 1857. They were executed by hanging on the 6th of March, 1858.
And now we remember some other personalities today. We are remembering the great painter, architect, sculptor, Michelangelo, on his birth anniversary. And he was born in the Republic of Florence, and his work was inspired by models from classical antiquity and had a lasting influence on Western art. Michelangelo's creative abilities and mastery in a range of artistic arenas define him as an archetypal Renaissance man, along with his rival and elder contemporary Leonardo da Vinci. Given the sheer volume of surviving correspondence, sketches and reminiscences, Michelangelo is one of the best documented artists of the 16th century. He was lauded by contemporary biographers as the most accomplished artist of his era.
आज अंकित तिवारी का जन्मदिन है. ये भारतीय संगीतकार और गायक हैं. इन्होंने सोनी टीवी, स्टार प्लस और कलर्स जैसे कई टीवी धारावाहिकों के लिए संगीत दिया. इसी राह में इन्हें फिल्म आशिकी 2 में गाने का मौका मिला. आशिकी 2 के फिल्म का गीत सुन रहा है न तू के लिए इन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली.
Today is also Raj Sippy's birthday, and we all know him as a very accomplished director and producer who worked predominantly in Hindi cinema. And he was very prominent in the 1980s with successful films like Inkar, Satyamev Jayate, Mahadev, Satya Pe Satya, Boxer and Bazi. In fact, Vinod Khanna ka jo comeback tha after his Osho stint, Satyamev Jayate, badi super duper rahi thi usse, isn't it? And Satya Pe Satya ka ek bada achha sa gana hai, let's listen to that. मुझे ऐसे ही तड़पाओगे मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पलने पिघल जाओगे एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पलने पिघल
आज जन्मदिवस है मकरंद देश पांडे का। ये हिंदी, कन्नड़, मराठी, तेलुगु, मलयालम, तमिल सिनेमा और भारतीय थिएटर के अभिनेता, लेखक और निर्देशक हैं। इन्हें फिल्म जंगल सरफरोश, स्वदेश, मकड़ी, सत्य और डरना जरूरी है जैसी फिल्मों में सहायक और महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। साथ ही इन्होंने 5 फिल्मों का निर्देशन भी किया है। आइए सुनते हैं इनकी फिल्म का एक गीत।
सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रुम दुम दानन रत दुम दानन, रुम दुम दानन रत दुम दानन, रुम दुम दानन रत दुम दानन भैया।
और श्रोताओं, अब हमारे चलने का भी समय आ गया है और वक्त है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सरफिरोजी और सायरा मुश्तबा को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।